सुषमा देवी कमरे के दरवाजे की चौखट पर कुछ पल यूं ही खड़ी रहीं, जैसे कमरे को नहीं कमरे के पीछे छिपी अपनी अहमियत को नाप रही हों। उनकी आंखें धीरे धीरे चारों कोनों में घूमी। दीवारों पर हल्के क्रीम रंग का पेंट था, जिस पर सुनहरे बॉर्डर की पतली बेलें बनी थीं। खिड़की के पास मोटे पर्दे लटक रहे थे, गहरे मरून रंग के, जिनकी झालरें नीचे तक झूलती थीं। कमरे के बीचों बीच बड़ा सा पलंग रखा था, जिस पर सफ़ेद चादर इतनी करीने से तनी थी मानो किसी ने सांस भी ना ली हो उसके पास। बाएं तरफ लकड़ी की बड़ी अलमारी थी, जिसके ऊपर चांदी की थाली में धूपदान, अगरबत्ती और छोटा सा घंटा रखा था। सामने की दीवार पर भगवान की तीन बड़ी तस्वीरें टंगी थीं, राम दरबार, राधा कृष्ण और शिव परिवार। उनके नीचे एक छोटी सी चौकी बिछी थी, जिस पर गीता, रामायण, सुंदरकांड और कुछ मोटी मोटी धर्मग्रंथों की किताबें करीने से सजाई गई थीं। किताबों के पन्नों के बीच रंगीन बुकमार्क झांक रहे थे, जैसे उन्हें पढ़े जाने का इंतजार हो। सुषमा देवी ने हल्की सी गर्दन तिरछी की, होंठ से कोड़ते हुए बोली, ठीक ही है। उनकी आवाज़ में तारीफ कम तौल ज़्यादा थी। रत्ना देवी के चेहरे पर जो हल्की उम्मीद थी वो एक पल को थमी, पर उन्होंने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। दीदी, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था वैसा ही करवाया है। नीचे का कमरा इसलिए दिया कि सीढ़ियाँ चढ़ने की दिक्कत ना हो आपको। सुषमा देवी धीरे धीरे अंदर बढ़ीं। उनके कदमों में रुक रुक कर चलने वाली आदत थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखती हूँ। उन्होंने पलंग के कोने को हाथ से दबाकर देखा, फिर उंगलियों से चादर की सिलवटें सीधी की। मेरे घर में पलंग और भी ऊँचा है, बैठने उठने में कमर नहीं झुकानी पड़ती, और गद्दा वो तो बादल जैसा मुलायम, यहाँ तो बस ठीक ठाक है। श्यामली ने चुपचाप शकुंतला की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक सा भाव था, हल्की झेप और थोड़ी खींच। नौकर अभी भी दरवाजे के पास बेटी पकड़े खड़ा था, हाथों में हल्की कमकपी आ चुकी थी, पर बोलने की हिम्मत नहीं। सुषमा देवी अब चौकी के पास पहुंची। किताबों की तरफ झुककर उन्होंने एक रामायण की जिल्द पर हाथ फेरा, फिर बोली, किताबें तो रखती पर पढ़ेगा कौन? यहाँ किसी को ढंग से पाठ आता भी है या नहीं? मेरे घर में तो सुबह शाम पूरा पाठ होता है, बच्चे खुद बिठाकर सुनाते हैं मुझे, जैसे महारानी बैठी हों दरबार में। रत्ना देवी ने तुरंत कहा, दीदी यहाँ भी सब इंतजाम है, पंडित जी रोज आएंगे, शाम को भजन भी होगा। देखेंगे, सुषमा देवी ने धीमे से कहा, पर वो देखेंगे आश्वासन नहीं चेतावनी जैसा था। उन्होंने खिड़की का पर्दा हटारा। बाहर आंगन में तुलसी का चौरा दिख रहा था, जिसके पास दो नौकरानियां कुछ सजा रही थीं। एक पल को उनकी आंखों में संतोष की हल्की झिलमिल आई, पर अगले ही क्षण वो भी ढक गई। तुलसी ठीक जगह है, लेकिन चौरा थोड़ा छोटा है। मेरे घर में बड़ा है, चारों तरफ दीपक रखने की जगह बनी है, यहां तो दो ही रख पाओगे। शकुंतला ने धीमे से कहा, मौसी जी अगर आप कहें तो बड़ा बनवा देंगे। सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी नापती हुई नजर। बनवाना ही पड़ेगा, आखिर एक महीना रहना है मुझे यहाँ, धीरे धीरे सब बदल दूंगी, आदत है मुझे चीजों को अपने हिसाब से करने की। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी फैल गई। बाहर से बर्तन खनकने की आवाज आई, फिर किसी के हंसने की धीमी गूंज, पर कमरे के भीतर हवा थोड़ी भारी हो चुकी थी, जैसे दीवारों ने भी उनके शब्दों का वजन महसूस कर लिया हो। रत्ना देवी ने बात संभालने के लिए कहा, दीदी आपकी बेटी रखवा दूं, कपड़े अलमारी में सजा देंगे? नहीं, सुषमा देवी ने तुरंत कहा, मेरी चीजें मैं खुद जमाऊंगी, किसी को पता नहीं होता क्या कहाँ रखना है, एक बार गलत जगह रख दिया तो फिर ढूंढते रहो। नौकर ने राहत की सांस ली, बेटी धीरे से अंदर रख दी। सुषमा देवी ने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, ध्यान से रखना, इसमें मेरी पूजा की चीजें हैं, जरा भी इधर उधर हुई तो ठीक नहीं होगा। नौकर ने झट से हिलाया, जी मालकिन। अब सुषमा देवी पलंग पर बैठी, उनकी साड़ी का पल्ली कंधे से फिसलकर गोद में आ गया। उन्होंने उसे ठीक किया और कमरे को एक बार फिर देखा, इस बार जैसे स्वीकार नहीं अधिकार जता रही हूँ। चलो फिलहाल ठीक है, पर याद रखना रत्ना, मैं जैसी हूँ वैसा माहौल चाहती हूँ, मेरे बच्चे मुझे सिर आंखों पर रखते हैं, यहाँ भी वैसा ही सम्मान चाहिए, समझी? रत्ना देवी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, आप बड़ी हैं दीदी, आपका मान रखना हमारा फर्ज है। श्यामली ने आगे बढ़कर तकिया ठीक किया, पानी का गिलास मेज पर रखा। सुषमा देवी ने उसे गौर से देखा, जैसे पहचान रही हूँ। श्यामली ने घबरा कर नजरें नीचे की। शकुंतला ने पर्दे की सिलवटें सीधी की। सब अपने अपने तरीके से कमरे को और बेहतर दिखाने की कोशिश में लग गए, मानो कमरे से ज्यादा उस पल की कसक को समझाने की कोशिश हो। सुषमा देवी ने गिलास उठाया, एक घूंट पानी पिया और धीमे से बोली, बस अब रहने दो, मैं थोड़ा आराम करूंगी, और हाँ, शाम को भजन का इंतजाम देख लेना, आवाज साफ होनी चाहिए, मुझे ऊंची नीची धुन पसंद नहीं। सबने जी कहा और एक एक कर बाहर निकलने लगे। दरवाजा आधा खुला रह गया। सुषमा देवी पलंग पर टेक लगाकर बैठी, उनकी आंखें फिर किताबों की तरफ गईं, होंठों पर हल्की सी रेखा उभरी, ना पूरी मुस्कान ना पूरी नाराजगी, बस एक संतोष की ये जगह अब धीरे धीरे उनकी बनाई हुई लगेगी। कमरे में अगरबत्ती की खुशबू खुलने लगी थी, बाहर आंगन में हवा चली, पर्दे हल्के से हिले और उसी हल्की सरसराहट के बीच सुषमा देवी ने आंखें मूंद ली, जैसे मन ही मन इस घर के हर कोने का नक्शा बदलने की शुरुआत कर दी हो। दरवाजा आधा खुला था और बाहर से आती हल्की रोशनी फर्श पर लंबी रेखा खींच रही थी। सुषमा देवी ने आंखें तो मूंद ली, रही थी, पर उनका मन सोया नहीं था। उनके कान बाहर की हर आहट पकड़ रहे थे। बर्तन की छनक, नौकरों की फुसफुसाहट, आंगन में चलती झाड़ू की सरसराहट, उन्हें आदत थी घर की धड़कन सुनने की। कुछ ही देर में श्यामली धीरे से वापस आई। हाथ में पीतल की छोटी थाली थी जिसमें कपूर, दिया और फूल रखे थे। उसने बिना आवाज किए चौकी के पास थाली रख दी और किताबों को एक सीध में कर दिया। तभी सुषमा देवी ने आंखें खोले बिना कहा, दिया रोज इसी समय जला करना और फूल ताजे हों, मुरझाए नहीं। श्यामली चौंक गई, जी कहकर जल्दी से बाहर निकल गई। सुषमा देवी हल्का सा मुस्कुराई। उन्हें अच्छा लगता था जब बिना देखे भी लोग उनकी मौजूदगी महसूस करें। उन्होंने करवट बदली, खिड़की से आती हवा उनके चेहरे को छू गई। मन ही मन सोचा, घर नया है, लोग नए हैं, पर ढंग सबको सीखना पड़ेगा। कमरे की शांति अब उनके अनुकूल होने लगी थी, जैसे दीवारें भी धीरे धीरे उनका आदेश स्वीकार कर रही हों।